मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सबे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। व्यवहाराभासी के प्रकरण में सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। इसमें आश्रव तत्व के बारे में क्या भूल करता है इसकी चर्चा अपन ने कल की थी, तो सामान्य आश्रव तत्व की बात हुई थी। अब आश्रव पांच प्रकार का होता है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इन पांच से आश्रव होता है, तो इन पांचों के बारे में अलग अलग से थोड़ा संकेत कर रहे हैं कि वो क्या गलती करता है। कौन? व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि, और कौन? जिसने सारे जैन शास्त्रों को पढ़ा है। ऐसा पेज नंबर 226 और नीचे से चौथी लाइन, तथा मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। पर बाहर से मिथ्यात्व है तो बस गुरु को, देव शास्त्र को नहीं पूजना, तो समझ लिया मैंने मिथ्यात्व तो टाल दिया। व्रत ले लिए तो अवृत्ति को टाल दिया। कषाय नहीं करना चाहिए, अब तो मैंने कषाय बहुत कम कर दी है। ऐसा बहुत मानते रहते हैं हम आपस में ही। सभी बादशाही गुणस्थान में हैं और सभी के सभी कषायें जम कर हैं, लेकिन हम उन्हीं में से कुछ लोग मंद कषायी बन गए हैं, कोई तीव्र कषायी बन गए हैं, और कसाई के ही बेग में एक दूसरे को कसाई कहते रहते हैं, पर अपने को अकसाई मानते रहते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता? बन लीजिए कसाई नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को उपदेश भी देते रहते हैं। क्या है, क्या है फर्क, क्या है? चारों कसायों में से क्रोध, मान, माया, लोह, अहंतान, मंदी, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, कौन सी कसाय आपके नहीं है? आप भले ही माने कोई भी नहीं है, भगवान तो ये कहते हैं कि जब तक आत्मा का अनुभव सम्मा दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तब तक सभी कसायें निरंतर मौजूद है। एक दूसरा पॉइंट के वो मंद कसाय जिसको आप कसाय नहीं होना मानते हैं, उसमें तुम्हारा किया कुआ कुछ भी नहीं है। ये तो कसायों का स्वरूप में ही शामिल है कि वो मिर्गी की बेक की भांति घटती बढ़ती रहती है, है ना? वो उसमें ही सहज भाव में घटती बढ़ती है, क्योंकि ऐसी हमारी शारीरिक सामर्थ्य भी नहीं है कि हम निरंतर ऐसा एक सा क्रोध करते रहे। पांच मिनट गुस्सा आ जाए जोर का तो आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतम आ जाता है, और यदि उस वक्त ब्लड प्रेशर लो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों? उतने में तो ये हालत हो जाती है, यदि आध घंटा रह जाए तो जल के खाक हो जाओ। और क्या था वो दीपायन मुनि का जो आग लगी सारी द्वारका में, खुद भी जल के मर गए। वो थोड़े लंबे काल तक वही कसाय रह गई। ये शरीर में ताकत है तुम्हारे में कि उस कसाय के बेग से जो गर्मी बढ़ती है और जो प्रतिक्रिया होती है उसको बर्दाश्त करने की है। ये तो उस कसायों में भी ऐसा ही नेचर है कि ठंडी गर्म होती रहती है, मंद तीव्र होती रहती है। एक तथ्य की ओर में और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कसायों का स्वरूप बदलता रहता है। हमारे दिमाग में अभी क्रोध नाम ही कसाय कसाय है, बाकी तो कसाय कसाय सी नहीं लगती हैं। लेकिन ये पांचों इंद्रियों के विषयों की अधीनता, ये तीव्रतम लोभ कसाय है। कोई रुपये पैसे के लोभ थोड़ी लोभ है, पांच इंद्रियों के विषयों के लोभ कोई लोभ कहते हैं। और ये आदमी 24 घंटे या तो पांच इंद्रियों की विषय सामग्री जोड़ने में और या भोगने में लगा रहता है। निकालो अपने 24 घंटे का समय, तो उसमें कुछ मिनटों को छोड़कर बाकी कुछ तो समय जोड़ने में और कुछ भोगने में ही लगा रहता है। वो सब तीव्र कसाय है, वो मंद कसाय का नहीं है। सब ख्याल में हम जब थोड़ी क्रोधादिक कम दिखें तो अपने को मंद कसाई मान के बैठ गया है और बिल्कुल पांच इंद्रियों के विषय में लगा है, ताश खेल रहा है बैठा बैठा, और समझती नहीं कि मेरे को तीव्र कसाय है। तो ये तो अकसाय से खेल रहा होगा। क्यों बनी? मैंने ये जो हम कहते रहते हैं कि तुम कसाई हम कसाई नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है। ये तो कसाय में ही ऐसा स्वरूप पड़ा है मंदता और तीव्रता का, और ऐसे ही शुभ शुभ का कि नहीं मेरे परिणाम तो शुभ हो गए, मेरे परिणाम तो अशुभ हो गए। इस शुभ का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है और अशुभ का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है, और मंद का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है और तीव्र का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। ये जो पहले गुणस्थान में जितने भी जीव हैं उनका एक तारतम्य है, अधिक से अधिक कितना और कम से कम कितना, तो वो उसी की रेंज में ही, जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र में लहरें आती हैं, अमावस के दिन अलग टाइप की आती हैं, पूर्णमासी के दिन अलग टाइप की आती हैं, अष्टमी दिन की अलग टाइप की आती हैं, तो उन सारी लहरों का मिलाकर एक अंतिम पॉइंट है कि वो बढ़ेंगी तो अधिकतम यहां तक आएंगी और घटेंगी तो एक निम्नतम पॉइंट तक यहां तक घट जाएगा। वो दरिया है ना, तो दरिया का बाढ़ और घटना इन दोनों का एक अंतिम बिंदु है, और उन दोनों बिंदुओं के बीच में एकम दो तीज के हिसाब से अलग अलग बिंदुओं पर वो घटता बढ़ता रहता है। बस वो उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। यदि इसका भरोसा हमें नहीं होता तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम खड़ी नहीं कर देते। उससे ज्यादा घटने वाला नहीं है, ये मोटी मोटी बात हम जानते हैं ना। तो उसमें काय का घटा और काय का बड़ा, वो तो समुद्र के स्वरूप में शामिल है। कितनी तब भी वो वैसा ही होगा, और कितना ही सूखा पड़े तब भी वो वैसा ही होगा। उस ऊपर की बरसात और सूखा से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कितनी धर्म की बरसात हो और कितनी कसाई की चर्चा हो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेवल के भीतर में हमारी कसाई मंद तीव्र होती रहती है, सुबह सुबह होती रहती है। वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करता है कि तुमने अपने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करके कुछ कसाय कम कर ली हो। अभी कसाय कम करने की विधि ही नहीं जानते, कसाय कम कैसे हो जाए। कसाय किसे कहते हैं हमें एक कसाई का आप स्वरूप नहीं जानते हैं, तो कसाय कम कहां से हो जाएगी। इसलिए कहते ऊपरी ऊपरी कसाय करने को ऐसे मानता और समझ लेता मैंने कसाय छोड़ दी। और सब एक सबसे बड़ी गलती देखो क्या हो रही है कि मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय और योग पांच हैं और कहीं कहीं चार भी हैं। समय सार में चार हैं, तत्वासूत्र में पांच हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रमाद और कसाय को इकट्ठा कर दिया तो चार रह गए, उन्हें अलग अलग कर दिया तो पांच हो गए। क्या है कि क्रम ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व जाएगा है ना, फिर अवृत्ति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कसाय जाएगी और फिर योग जाएगा। और इनका गुणस्थान क्रम ऐसा है कि पहले गुण से गुणस्थान में मिथ्यात्व जाएगा, तो पांचवें में छठवें में आवृत्ति जाएगी, फिर सातवें में और उसके ऊपर आगे प्रमाद जाएगा, फिर दसवें तक कसाय जाएगी दसवें में, और फिर योग तेरहवें में जाएगा, मैंने चौदहवें में जाके योग जाएगा, तेरहवें तक रहेगा। ये पॉइंट है ना, पांच के पांच पॉइंट जाने के। तो जो जैसे गुणस्थान बढ़ेगा उसी हिसाब से जाएगा ना, इसी क्रम से जाएंगे ना। अब हमारा क्या पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ कहां से शुरू होता है, योग से, जो सबसे अंत में जाना है, और जिसके भेजने के लिए अरहंत भगवान भी कुछ नहीं करते, क्योंकि अब तो उनके चार तो चले ही गए ना, मिथ्या त्वरति प्रमाद कसाय तो चले ही गए ना, क्यों अब तो योग ही रह गया ना, और उनको उसी में करना चाहिए ना कुछ, तो वे उसके लिए कुछ नहीं करते। वो समय पे अघातिया कर्मों की आयु पूरी हुई और समय पे अपने आप जाते हैं, तो जिनके लिए करना चाहिए वे ही कुछ नहीं करते, और अनंत वीर के धनी अनंत उसे एक समय पहले खत्म नहीं कर सकते। उस योग को कंट्रोल करने में हम सारा प्रयत्न लगा रहे, वीर की हड्डी सीधी रखो, नाक ऐसा करके बैठो, आंखें बंद करके रखो, ऐसा बैठो योग, हम तो योगा करते हैं, तो योग का योगा हो गया, एक गुप्त का गुप्ता हो गया, मिस्र का मिस्रा हो गया ना, है तो अंग्रेजों के चक्कर में योग का योगा हो गया, हम योगा करते हैं। अरे योगा अरहंत नहीं करते, तू योगा करता है। तो योगा करने के नाम पर पहले तो कहते हैं मन वचन काय को बस में करते हैं, ऐसे बोलते थे, तो मन वचन काय तो सब जड़ की बनती है, तो उसको बस में करते हैं तो दूसरे देव का कर्ता बनता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है। तू उसको बस में करता है कि मिथ्यात्व का पोषण करता है, और हम उन्हें बस में करते हैं ऐसा सोचकर उनके बस होता है। क्या आनंद भाई, क्या कैसे मतलब कि 24 घंटा उसको बस करने के चक्कर में ऐसी रीढ़ गड्डी करके बैठा रहता है, नीचे करने करता है, टांगे ऊपर करता है, नीचे करता है, हाथ पैर हिलाता है, तो 24 घंटा उसी के लिए लगा रहता है, तो तू उनके बस हुआ, तू उनकी सेवा में लगा, तू उनका गुलाम हुआ कि वे तेरे गुलाम हुए, वो मैं बस में कर रहा हूं, इनको सीधी कर रहा हूं, टेढ़ी कर रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, क्या तू उनके बस हो रहा है कि वो तेरे बस हो रहे, बोल। ये मनुष्य भव का ये जिसकी अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक समय की कीमत है, वो सारी जिंदगी उसमें बर्बाद कर रहा है, क्यों तू गुलाम बन रहा है उनका, क्यों उन्हें गुलाम बना रहा है। योगा से शुरू करते हैं बस। अरे ये बीमारी अपन मुमुक्षुओं में भी शुरू हो गई है, कि ध्यान सवर की साधना सवर की ना वाला अलग अलग तरह से कुछ नाम अलग लगा के थोड़ा थोड़ा बदला बदली करके ऐसा करके, क्योंकि जो अपने यहाँ वो है ना वो उसकी आलोचना के भय से कुछ थोड़ा सा जैसे अगल बगल करके वो सब करते हैं। और सबसे सीधा सरल बिल्कुल ऐसा काम है कि बुद्धि की जरूरत नहीं है, अकल की जरूरत नहीं है, विद्वत्ता की जरूरत नहीं है, अध्ययन की जरूरत नहीं है, 10-5 आसन ऐसी क्रियाएं सीख ली, ऐसी सीख ली, आंखें बंद कर तो क्या दिया, बस बोलने की जरूरत नहीं है, 2-4 वाक्य बोल दिए, वही वही के वही रोजाना ऐसा करो, आंखें बंद कर लो, बैठो अपने आत्मा के साथ, इतने में परम गुरुदेव बन जाते हैं, सारी जिंदगी चलता रहता है। अरे यहाँ हमारे यहाँ तो पसीना छूटता है, शांति जी खड़े होकर बताएंगे कि अभी तुम्हारी आवाज धीरे धीरे है और मद्रासी टोन है और दक्षिणी भारत का टोन नहीं चलेगा और हिंदी भाषा का ये नहीं आया है, भाषा का सुधार करो, भाव का सुधार करो, व्याकरण का सुधार करो, न्याय का होना चाहिए, उदाहरण ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, शास्त्रों का गहरा अध्ययन होना चाहिए, इसमें तो क्यों 5 साल में भी फिर चलती रहती सारी जिंदगी तक, क्यों रोजानी परीक्षा होती रहती है, जरा सा आपने वो दृष्टि के विषय में पर्याय मिला दी थी, निकाल दी थी, रोज ही नहीं फेल पास का सर्टिफिकेट मिलता रहता है। इतने इस मुफत के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही क्या है पंडित जी, ना फंस गए आप। और हम सब तो सीधा सच्चा काम था करने है ना, और बस 10 दिन का शिविर और सम्मान रखो और 3 घंटा सुबह नीचे ऊपर टांगे करो, 3 घंटा शाम को नीचे ऊपर टांगे करो और धर्म हो जाए प्रतियोगिता के नाम पर चलता। दसवें गुण स्थान में जाती है वो मत करो, वो उपदेश शुरू होता है। मिथ्या कर नहीं करो, अवरति मत करो, प्रमाद मत करो, कोई बात ही नहीं है, तो दो ही बातें हैं। क्यों योगा करो और कसाय मत करो। और वो कह रहे हैं जैसे वो ऐसे कह रहे हैं कि हम कसाय नहीं कर रहे हैं। अभी कसाय किसे कहते हैं उसकी परिभाषा नहीं जानते हैं और कहते कसाय मत करो। तो एक एक सही घटना है, मैं बहुत बड़े आदमियों की बात है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, अब इस जगत में है भी नहीं इसलिए नाम लेने से फायदा भी नहीं है। तो ऐसे बैठे थे, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, मेरे साक्षी में मोटानी थे भी, वो यहां है नहीं चले गए कि सब आप छल करते हो। क्या छल करते कि मुनि राजों को नमस्कार भी नहीं करते हो और कहते भी नहीं हो, छल है। अच्छा अब छल किसे कहते हैं ये भी हम दूसरे सेठियों से पढ़ेंगे। हम तो छल करते हैं, मैं आपसे पूछते हूं आप क्या करते हो, आप बताओ, आप मुझे लिस्ट दे दो गायब की दृष्टि में कौन कौन सच्चे मुनि हैं। है क्या बात करते हो, और हम तो इतना जानते हैं, जानते 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 हैं, क्या बोला उसको कहना अच्छा नहीं, समझ गए ना। तो मैंने कहा कि यहां ये कह रहे हो तुम और वहां जाके साष्टांग पढ़ोगे और दुपट्टा उड़ के आहार दोगे, छल इसे कहते हैं भाई साहब। क्या बसंत भाई, बहुत बड़े आदमी से कही थी, सोच भी नहीं सकते हो आप, आपको तो पता ही होगा। मैंने कहा छल इसे कहते हैं पंडित जी कि यहां तो तुम इतनी बुराई कर रहे हो और वहां जाकर के अष्टांग पढ़ोगे आहार दोगे सब करोगे, इसका नाम छल है भाई साहब। कि हम इस जो कहते हैं नहीं कहते हैं यदि कुछ, तो उसका नाम छल नहीं है, सभ्यता है, उसका नाम शांति है, हम शांति के कामना करते हैं, उसका नाम है हमें निंदा में रस नहीं है, उसका नाम है कि हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उसका नाम छल नहीं है। तो ऐसे ही अनंत कसाई के धनी दूसरों को कसाई होने की घोषणा किया करते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है, सभी एक ही स्टेज पर खड़े हैं। यदि आत्मा का अनुभव नहीं है और सम्यक दर्शन नहीं है तो सभी बादशाही गुण स्थान में खड़े हैं, और जो थोड़ी कम ज्यादा दिखाई देती है वो भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत है ना, जो पर्यायगत योग्यता के कारण है, और समझो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार निमित्त निमित्त एक संबंध है ना, क्रोध कर्म का उदय हो, अरे इनका तुम्हारे से कुछ लेना ही देना नहीं है, ये जो बाह्य परिग्रह संपत्ति है ये, और जो विकारी भाव है ये, इनका सीधा डायरेक्ट संबंध कर्म के उदय के साथ है, निमित्त निमित्त संबंध, उपादान उपादेय संबंध तो पर्यायगत योग्यता के साथ है जति सही, और निमित्त निमित्त संबंध कर्म के उदय के साथ है। पंडित जी तेरे हाथ में है क्या, अरे चक्रवर्ती तो सब समझते थे ना कि नहीं करना चाहिए गुस्सा, अब चला दिया भाई भाई चला दिया चक्र, क्यों चला दिया कि नहीं चला दिया, और हजारों उदाहरण मिलेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम खूब चक्र चलाओ, मैं तो ये कहता हूं कि लौकिक दृष्टि से जो शांति की सभ्यता की बातें करना हो तो करो, मुफ्त में एक दूसरे को कसाई समझकर अपने को शांत समझकर, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा के धोखे में रहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ना इससे पारमार्थिक लाभ होगा और ना लौकिक लाभ होगा। कसाई कसाई कह के किसी की कसाई नहीं छुड़ाई जा सकती है। एक दूसरे की आलोचना करने का काल नहीं है, ये बहुत गंभीरता और शांति से आत्मनिरीक्षण का काल है। और जो भी वर्तमान में परिस्थितियां हैं उनको बदलना किसी के काबू की हाथ की बात नहीं है, उसमें ही कितनी शांति से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पर हो, चाहे सामाजिक लेवल पर हो, चाहे सारी मुक्षु समाज के लेवल पर हो, चाहे दिगंबर समाज के लेवल पर हो, चाहे पूरी जैन समाज के लेवल पर हो, चाहे भारतीय समाज के लेवल पर हो, हम उन सारे लेवलों पर कितनी शांति से अपनी धर्म आराधना करते हुए समाज शांति से अपने काम करते रह सकता है, उसकी बात सोचो। और उसके लिए यदि कुछ कर सकते हो उसको, तो कुछ विकल्प यदि करने की सीमा तुम्हारी है तो उसमें विकल्प करो। एक दूसरे की तरफ फेंकने से कुछ काम नहीं होगा कि तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, उसे कुछ नहीं पाएगा। तो ये बात देखो इसमें लिखा है क्या, तो एक एक का कहते हैं। अभी तो उन्होंने चारों का इकट्ठा बताया है कि मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग ये आश्रम के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग में इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। तो कसाई की जाति को पहचानने के मैंने थोड़े नमूने आपके सामने बताए कि कैसे पहचानना चाहिए जाति। देखिए मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं कि साहब वो इतनी गालियां बकता रहा और आप तो मुस्कुराते ही रहे, हमने इतना शांत आदमी नहीं देखा, आपको तो कसाय नाम की चीजें ही नहीं दिख रही हमें। कि देखो भाई कुत्ता अपन को काटे तो कुत्ते को काटा जाता है क्या? नियम तो ऐसा है, हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। हाथी निकले और कुत्ते नहीं भौंके तो भी कुत्ते नहीं, और कुत्ते भौंके और हाथी मुड़कर देखे तो वो हाथी नहीं। क्यों पंडित जी? धन है, धन है, तालियां तालियां तालियां। कहे की तालियां बजा रहे कि कितना शांत प्रणाम, कितना निकसाय भाव। यदि ये निकसाय भाव है तो कसाय किसे कहते हैं? उसने भी अपने को हाथी और उसको कुत्ता घोषित कर दिया, क्यों? और उसको भौंकने वाला कुत्ता कह दिया। और हम कुत्ता आदमी को काट खाए तो आदमी कुत्ते को थोड़ी काटता है, ऐसा कह के अपने को आदमी उसको कुत्ता कह दिया। बस इतना है कि समझदार आदमी सभ्यता से गाली देता है, मूर्ख माँ बहन की ऊपर उतर जाता है। बस इतनी सी बात है, वो माँ बहन की पे उतर जाता है तो सारी दुनिया उसको बुरा कहती है और सज्जनों उत्तम हो जाते हैं। लेकिन ये भी सब कसाय ही है भाई साहब। मैंने आप तो हाथी हो और भौंकने वाले कुत्ते हैं इसलिए आप मुड़ के नहीं देखते हो। हाँ बात ऐसी ही है। तो ये कहते कहते वो ये भूल गया आलोक जी कि हाथी भी पशुओं का ही भेद है, वो आदमियों का नहीं है, अकसान्यों का तो है ही नहीं। क्यों? वो दूसरे को कुत्ता बनाने के चक्कर में कुछ भी पशु ही तो बन गया। ऐसी स्थिति है इसके अंदर की, झांक के देखो, किसी को गधा कहो तो मारने को दौड़ता है और शेर कह दो तो खुश खुश को, शेरे पंजाब, शेरे कश्मीर, हाँ शेरे जैन समाज है, कहता बोला तो शेर है, वो तो शेर आदमी है, खुश होता है। गधा को तो नाराज होता है, अरे भाई शेर भी पशु है और गधा भी पशु है, तो पशु बनना ही अच्छा नहीं है। और यदि आपको कदाचित पशु बनना स्वीकार भी है तो दो में से कौन बनना ठीक है, शेर के गधा को? शुद्ध शाकाहारी गधा और मांसाहारी क्रूर तीव्र कसाई शेर, बोलो कौन कौन बनना पसंद है? शेर बनना पसंद है, गधा बनना पसंद नहीं है? कितना सीधा सज्जन सरल, बिना मेहनत के खाए नहीं, बेईमानी नहीं, इनकम टैक्स चोरी नहीं, सेल टैक्स चोरी नहीं, जो जो रूखा सूखा मिल जाए उसे खा पी के संतोष करे, दिन भर काम करे, क्यों? ऐसा शुद्ध सात्विक सदाचारी सभ्य व्यक्ति बनना उसे पसंद नहीं है। क्रूर हत्यारा देख के खा जाए, जैसे देख के भगे, ऐसा बनना पसंद क्या करे? सबसे पहली बात तो कि पशु बनना ही अच्छी बात नहीं है, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई क्या, लेकिन उनमें से ही जैसे हमने पशुओं में से ही कुछ अच्छे और कुछ बुरे बना लिए हैं, ऐसे कर्मों में से ही कुछ पुण्य और पाप हमने अच्छे करके बुरे के भेद बना लिए। ये पशु की जाति त्रंज गति अच्छी नहीं है, ऐसे वो कर्म की जाति अच्छी नहीं है, ये हमारे ख्याल में नहीं है। तो उन्होंने देखो पहले क्या था, सामान्य से आश्रव तत्व की बात की थी, फिर क्या कहा, पांच चार भेद किए और चार में सामान्य बात करी, और अब चार की विशेष बात करते हैं। कितना क्रमिक विकास किया टोडरमल जी ने, और दो दो पंक्तियों में वहां अब मिथ्यात्व की बात करते हैं। सबसे पहले अन्य देवादि के सेवन रूप गृहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अगृहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। मैं तो साहब गर्दन काट दो लेकिन मैं किसी के चरणों में माथा टेकूंगा नहीं, और ये तो उनके पास चले गए तो उनके पास चले गए, मैं तो किसी के पास नहीं जाऊं, मर जाऊं चाहे नहीं जाऊं, क्यों? वो तो गीत में छात्र हो गया, किसी के पास चले गए वो चला गया, तो और तू नहीं गया तो समझ, मैं तो छात्र तो नहीं है महावीर में, मैं तो बचा रहा। लेकिन वो देह में एकत्व बुद्धि का जो अनंत गीत में छात्र पड़ा है, हैं? सबकी कर्तृत्व बुद्धि का मैंने ये किया, मैंने ये किया, स्वामित्व बुद्धि का मैं इसका मालिक, इसका जो स्वामित्व बुद्धि का है, भोक्तृत्व बुद्धि का जो अगीत मिथ्यात्व पड़ा है उसको पता ही नहीं, उसके बारे में सोचता ही नहीं है। अब इस पे लड़ रहा है, वो उसको मिथ्या जी घोष कर रहा है, उसको मिथ्या जी घोष कर रहा, कौन कौन कर रहा है, कौन कर रहे हैं देवेंद्र? कुछ मिथ्या दृष्टि, कुछ मिथ्या दृष्टियों को मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हैं, वे मिथ्या दृष्टि, वो उन्हें मिथ्या दृष्टि मानने को तैयार नहीं है। ये सब किन में हो रहा है? कोई बनियों में लड़ाई हो, वो कहते मैं भंगी जमानों से बात नहीं करता, यदि वो भंगी जमारी में लड़ाई हो मैं भंगी जमानों से बात नहीं करता, क्या क्या ही बात है, क्या मतलब है? ये अनादि का अगृहित मिथ्यात्व है, उसकी खबर ही नहीं आ गई मिथ्यात्व है, इसमें इसमें भी कोई मिथ्यात्व की बात है, ये उसके कल्पना में ही नहीं आती है ना। ये पंडित जी कहते हैं गीत थोड़ा सा बाहर का जो गीत मिथ्यात्व, ये मैं नहीं कहता गीत मिथ्यात्व नहीं छोड़ना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए, है? अरे गीत मिथ्यात्व तो मनुष्य जन्म की नई कहानी कमाई है, त्रंज गति में गीत मिथ्यात्व नहीं है बसंत भाई, देव गति में गीत मिथ्यात्व नहीं है, नरक में गीत मिथ्यात्व नहीं है, ये मध्यलोक में है, उसमें मनुष्यों में है, मनुष्यों में भी आठ वर्ष की उम्र के पहले नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो बुद्धि पूर्वक ग्रहण किया जाता है, उसका नाम गीत मिथ्यात्व है, और अनादि का है वो तो अगीत मिथ्यात्व है, वो बुद्धि पूर्वक ग्रहण नहीं किया गया, तो ऐसे समर्थन नहीं होता ना आठ वर्ष की उम्र के पहले, ऐसा गीत मिथ्यात्व भी नहीं होता, क्या समझे ना? क्योंकि जब बुद्धि आवे, सोचे समझे, फिर कुकुल कुलदेव के चक्कर में पढ़े और फिर उसे सत्य स्वीकार करे, तो वो गीत में ध्यात होता है। अब वो तो मान्यता के लेवल पे होता है, क्रिया के लेवल पर थोड़ी। मिथ्यात्व तो है ना सम्यक श्रद्धा, ये तो मान्यता के लेवल पर है, क्रिया के लेवल पर थोड़ी है। तो समंत भद्र ने, अपन कहते हैं ना बस शिवपिंडी, वो कह दिया भूख लगती थी तो जब शिवपिंडी में जाए कह दिया कि तुम मैं क्या खिलाते हो, मैं खिला दूंगा, और जाके खिलाया, अंदर सामान आया, अंदर खुद खा जाओ, कह मैंने भगवान तुम्हारे शिव जी को खिला दिया। क्यों पंडित जी, तो ये झूठ बोला तो शिवपिंडी के मंदिर में गए थे ना, कहते उन्होंने सम्यक बता लिया और मिथ्यात्व खो दिया। तो शिवपिंडी के मंदिर में पहुंचने के बाद क्यों, तो ये सम्यक बता रहा है। और यहाँ किसी का किसी के पास जाते ही खत्म हो जाता है, वो गीत में थर्स्टी हो जाता है। वो शिवपिंडी में पहुंच गए और वाणी से कह रहे कि मैं उन्हें खिला दूंगा, तो वाणी में वाणी से स्वीकार किया ना, मन से नहीं किया, वाणी से स्वीकार किया ना और क्रिया में स्वीकार किया ना, मैं गए सामने अंदर गए कि हमें खिलाता हूं, लाओ भोजन, और वाणी से कहा कि मैं खिलाऊंगा। क्यों साहब, हो गया गीत में तर्जी हो गए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा का छेद इसलिए किया कि नहीं छेद करते तो समाज में भी चला जाता होगा। तो जैनी मिथ्या दृष्टि हो गया उस काल में, ये बाहर संयोगों के आधार पर। मैं नहीं कहता कि तुम जाके शिवपिंडी के मंदिर में जाके चुपचाप भी बैठने लगो रुझी ना हो जाओ, तुम्हारा मिथ्या तो नहीं होएगा। मैं तो बता रही थी, कोई संयोग घटना के काल में कुछ होता है तो उतना मात्र से एकदम दूसरे को ये कर रहा, अपने को महान मान रहा। लेकिन तू महान हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो महानता का हेतु तो बता। तो जो असली जो अघीत मिथ्यात्व पढ़ा, ये उसके पोषण के लिए बिल्कुल नहीं है, उसका उल्टा अर्थ समझने की कोशिश नहीं करना। कि जो वो कहते जो अंतरंग में अघीत मिथ्यात्व है, जो अनादिकालीन है, अनादिकाल से निगोद में जिसके कारण रहा है, ये गीत मिथ्यात्व के कारण निगोद में नहीं रहा कोई जीव, क्योंकि निगोद में तो था ही नहीं गीत मिथ्यात्व। तो देव एक इंद्री हुआ, देव गति में तो है ही नहीं, वहां से वह एक इंद्री में चला गया कि नहीं चला गया सीधा, वो अगीत मिथ्यात्व की वजह से जाता है भाई साहब। ये तो बहुत टेम्परेरी आया हुआ मेहमान जैसा है, घर में जो जन्म से है और मृत्यु तक रहे, वो एक आध घंटे को आया, पूरे अनंत काल में मनुष्य भव कितना, बोलो, निगो से निकल के 2000 साल में 8 भव जो भी है ना, 8-16 जो भी समझ लो तुम, वही है ना। तो उनमें इसके चांस हैं, और वो भी मालूम कहा होता, भरत क्षेत्रादिक में ही होता, विदेश क्षेत्रादिक में नहीं होता, भोग भूमि में नहीं होता। इसे कितना पंडित जी से पूछा जाता, गणित जी बताएंगे मुझे, नहीं जानता हूं ज्यादा, यशपाल जी से पूछो, इनसे पूछे बताएंगे। बहुत इसका एरिया ऐसा है कि आप समझ लीजिए जेम, कि ये सारा अपना टोडामल स्मारक के बराबर एक नक्शा बनाओ सारे विश्व का, और उसमें एक पेंसिल आती है ना 4H वाली, जिसमें से आप रेखा गणित की रेखाएं खींची जाती हैं, उसकी नोक से ऐसा करके एक बिंदु बना दो, तो वह इतनी जगह है गीत में ध्यात और बाकी में कहीं नहीं है। भाई समझ गए आप, क्या अंदाजा लगाया, अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूं मैं। उस बिंदु का तूने इतना तूल दे रखा है, तूल नहीं देना इसका मतलब गीत मिथ्यात्व का सेवन करना, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि उसका नाम ले लेकर ये किसी को तत्व ज्ञान की चर्चा से विरक्त कर देना अच्छी बात नहीं है, ये कहना चाहता हूं। जैसे मान लो कि आप बहुत आदमी 20-25 परंपरा के बैठे, आधे से ज्यादा दक्षिण भारत के हैं, हसन भाई मैंने निगाह डाल के देखा, मेरे परिचित चेहरे मेरे को 10% भी नहीं दिखते हैं। 1000 आदमी जो बाहर से आया है, उसमें 100 आदमी भी जो रेगुलर मुमुक्षु जैसे अपन कहते हैं निरंतर की पहचान है नहीं है। 900 आदमी की जिनकी शक्ल नहीं देखी कभी ऐसे है, और वो कैसी कैसी परंपराओं में से आए हैं। और मुफ्त में ये एकाध लुअर डाल देना, कोई भी नाम लेकर के, मैं अभी किसका नाम लेकर लुअर डाल देना भी नहीं कहना चाहता, उसका नाम भी लेने नहीं चाहता। क्या आनंद भाई हैं? तो आनंद भाई जैसे को दवा देते जवाब देते दे, परेशान बेचारे, हमें इसके लिए लाए हो, हमें इसके लिए लाए हो, हमें ये सुनाने के लिए लाए थे। क्या जरूरत है? मेरा मतलब समझ में आई ना? ये आत्मा की अगीत में था छुड़ाने की बात करो, सात तत्वों की भूल निकालो, तो वो तो ऐसा काफूर होएगा पता नहीं चलेगा कहां गया। बाबू भाई खुद 20 बंदी परंपरा के थे, और बाबू भाई कहते थे मैंने उन्हें क्षेत्रपाल की पूजन लिखी थी। अमृत भाई है क्या? चले गए क्यों? है ना सच्ची बात? गोदिका जी 20 बंदी थे, महंत कुमार जी सेठी 20 बंदी थे। 20 बंदी मंदिरों के अभी भी टेस्टी है मेरे, जदी भाई की जदी भाई है आप जानो, ये तो नहीं थे बनी है। हम तो ऐसे भाग्यशाली हैं कि हमारा एरिया और हमारा जाति और हमारे एरिया में तो टोडरमल जी की परंपरा के हैं सब। बिल्कुल तेरा पंथ में नहीं, गुमान पंथ वाला तेरा पंथ, टोडरमल वाला भी। मेरे गांव में तो जो मंदिर आज भी है ना, माली को बर्तन नहीं धोने मांजने का अधिकार नहीं था छूने का मंदिर का। हमारी माँ मंदिर के बर्तन मांजती थी, और राख से मंदिर नहीं मांजते थे। कैसे? ये ईंट को का चूरा बनाते थे और ईंट के चूरे से बर्तन मांजती थी। मंदिर के बर्तन माली नहीं छू सकते, झाड़ू खुद लगाए मंदिर। इतनी हम तो इतनी सिद्ध परंपरा में पैदा हुए थे। हमें तो हमारा तो स्वामी जी के पास आने के बाद में कुछ सद्धाचारी बड़ा होगा, घटा नहीं। लेकिन आप लोगों ने तो बहुत त्याग किया है। कोई थानकवासी से आया है, तो कोई 20 पंथी से आया है, कोई कहां कहां से आया है। तो जो कितनी कितनी परंपराएं थी, जिन परंपराओं में पले थे, वो सब छोड़ के आए। आपको बहुत प्रसाद करना पड़ा है। सेठिया जी बैठे करने पड़े चारों तरफ वोई वोई, क्यों? ये बैठे हमारे आनंद बाबू, क्यों? हमारा तो हमें तो मैंने बोला ना कि पीढ़ियों से हमारे को ये संस्कार, पंडित जी भी ऐसे ही होंगे, हेमचंद जी भी ऐसे, जो मैं बता रहा हूँ ऐसी परंपरा के लोग आए, हम तो ऐसा। हम तो जब 2 बरस गए तब से मोक्ष महा प्रकाशक की शकल देखी है, वो दिल्ली से छपा हुआ आया था, तब से मोक्ष महा प्रकाशक था, वो हमारे यहाँ पढ़ा जाता था, और बिल्कुल शुद्ध परंपरा थी। उस परंपरा में पले पले तो से आए। आज भी जाओ हमारे गांव में, वैसी की वैसी बात होगी जो अभी मैं बता रहा हूँ, आज जाके वहां देख सकते हो। ये शास्त्र पढ़ते थे ना तो ऐसा लगा के पढ़ते थे, थाने के बांसी नहीं थे। सास पढ़ते वक्त सास का कोई छाटा ना चला जाए, और मालूम एक धोती कुर्ता पहन के सास नहीं पढ़ सकते थे। शाम को नहाना पड़ता था, मंदिर के धोती दुपट्टा पहनना पड़ते थे। ये हमने पढ़े शास्त्री होने के बाद, बमीना में थे तो शाम को कपड़े बदलकर गद्दी पर बैठकर ऐसा दुपट्टा लगाकर शास्त्र पढ़ने पड़ते थे। अब ये हस्तलिखित शास्त्र, और ऐसे में प्रवचन किए हमने। ये सन 48 में 51, 52, 53, 54, 55 तक, 56 तक मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इसलिए वो सब लोग गीत मिथ्यात्व, गीत मिथ्यात्व तो कह के वो करें। गीत मिथ्यात्व तो के रहते हुए तो अगीत मिथ्यात्व तो छूटेगा नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन गीत मिथ्यात्व की चर्चा से ना गीत छूटेगा ना अगीत छूटेगा। अग्नि तत्व की बात से तत्व का सही स्वरूप समझ में आएगा तो अगीत तो छूटेगा, और गीत का तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कब कहां चला गया, कब छूट गया, इसका ही पता नहीं चलेगा। समझ गया? इंद्रभूति गौतम का उदाहरण करे, इसे मूल कहते हैं गीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व तो जानता है लेकिन अगीत मिथ्यात्व की बात ही नहीं करता, ये लिखा ना उसका अर्थ कर रहा हूं मैं। ऐसे ही बाई में त्रिस स्थावर की हिंसा नहीं हो और इंद्रियों और मन के विषयों में प्रवृत्ति को अवृत्ति जानता है और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। अभिलाषा तो इतनी हो, प्रमाद परिणति कितनी हो, है ना, क्रिया तो नहीं हुई ना, मन तो आपका मन बिगड़ गया था, मन तो बिगड़ गया था लेकिन क्रिया तो नहीं हुई ना। लेकिन तुम गुरुदेव का शिष्य होकर क्या कह रहा है, जब मन बिगड़ गया था तो बात बिगड़ ही गई, तो क्रिया तो फिर अनंत कई कारणों से नहीं होती है, भय के कारण, अशक्ति के कारण, अवसर की अप्राप्ति नहीं हो उसके कारण, हम बहुत पापों से बचे रहते हैं कि नहीं बचे रहते, बोलिए, हमारा जीवन में जो संयम दिखाई देता है उसमें कितना तो हमारा आत्मा का और मन का योगदान है और कितना परिस्थितियों का योगदान है, बोलो। यदि हम खुद के मन को नाप के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कहां खड़े हैं, समाज का भय, इसका भय, ये करके ना। देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, प्रथमान योग में आपने पढ़ा होगा, जो राजा ने लिया लड़की पर मोहित हो गए, फटाफट के उठा लो पकड़ लो, ये सब राधी राजाओं का देखने में मिलता है ना, किसी सेठ का नहीं मिलता, किसी बनिया का नहीं मिलता, किसी ब्राह्मण का नहीं मिलता, किसी शूद्र का नहीं मिलता। इसका मतलब इस क्षत्रिय सब महापापी थे और ये ब्राह्मण बनिया सत्य सब धर्मात्मा थे, तो ये भी मिलता है वे ही उन्हीं में से उठ उठ के मोक्ष चले गए, सबसे ज्यादा मोक्ष भी वही चले गए, दोनों दिखते कि नहीं दिखते, ये जो सबसे ज्यादा सदाचारी दिखते थे, एक पत्नी वृत्ति दिखते थे, ये सब यही के अभी दुकानें पे बैठ के कपड़े ही बेच रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ आनंद भाई, कभी सोचा आपने? मैंने बहुत सोचा, ये उनके जीवन में पाप ज्यादा इसलिए दिखाई देता है कि उन्हें किसका भय, वे तो सबसे बड़े राजा है, उन्हें किसी का डर नहीं है, इसलिए डर वाला संयम उनके जीवन में दिखाई नहीं देता, तो जो मन में आया तो फटाफट कर डाला, तो सारी दुनिया को पाप दिखाई देता है, पर हमारे मन में उससे 100 गुना आया, लेकिन भय के मारे हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें हमारा प्रकट नहीं होता, वो उनका जितना दिखा उतना ही था, क्या आप समझ में आए ना, और हमारा दिखा नहीं बिल्कुल और उनसे 100 गुना था, तब तो ये संसार में रख रहे पंडित जी और वे छोड़ के चले गए, वही शंभु कुमार उसी भव से, क्या कहानी है मालूम आपको, कि शंभु कुमार ने कोई बढ़िया काम किया, श्री कृष्ण खुश हो गए, 7 दिन का राज्य दे दिया, अपना आराम पे चले गए, तो आज बेटा राज संभालेगा, अब बेटा ने उसका क्या दुरुपयोग किया है, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी सबको भ्रष्ट कर दिया, गांव में 7 दिन बाद श्री कृष्ण आए और पता चला तो देश निकाला दे दिया, हमारे देश में तू रहने लायक नहीं, अभी उसी भव से मुख चले, क्या आगे नहीं प्रदमन शंभु कुमार द्वे भाई, मेरे कहने का मतलब है इसी भव का पापी इसी भव मोक्ष भी जा सकता है, जिंदगी में किसी से एक आध गलती हो गई तो उसी की रट लगाते रहना लगाते रहना लगाते रहना, हाँ वर्तमान में भी उसकी परिणति वैसी ही हो तो बिल्कुल वो उतना ही घृणा का पात्र है, और परिणति में तो बदल सकती है ना, लेकिन बदल सकती है इसके बहाने अरे हम वो उसको अच्छा मान लें ये भी सही नहीं, बदल सकना अलग बात है और बदलना अलग बात है, बदल जाए तो अच्छा माना जा सकता है और नहीं बदले तो फिर वो वैसे ही का वैसा ना रहेगा, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं, मतलब मेरे कहने का मैं सब चारों तरफ जो देखता हूं और मेरे दिमाग में जो रिएक्शन होता है और तत्व ज्ञान से मैं उसकी मिलान करता रहता हूं वो मैं शुद्ध सात्विक भाषा में आपके सामने रखता हूं, उसमें कहीं यहां वहां देखने झांकने की कोशिश नहीं करना, वो वस्तु को समझना तत्व को समझना कि किसके बारे में कह रहे हैं ये कह रहे हैं, ये झांका तांकी बहुत होती है, अच्छी बात नहीं है, मैं उससे कहता भी नहीं हूं, मैं तो उससे जो एक रहस्य मेरे ख्याल में आया वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप समझे ना, उससे इतना ही समझना कि यदि मतलब पर्याय की भूल तो सुधरती ही है, सुधरनी ही चाहिए। ये जितने भी हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं उनकी पूर्व पर्याय में भूल नहीं थी तो अनंत काल तक संसार में रखड़े क्यों है? इतने काल तक संसार में रहे, ये भूल का ही तो परिणाम है, और भूल सुधरी और मोक्ष गए सुधरे का परिणाम है। तो भूतकाल की भूल को रोने की बात नहीं है, लेकिन इस बहाने के भूतकाल की भूल को छोड़ दो, वर्तमान में भी वैसी भूल होती रहे तो वो बात नहीं है, ये बहुत समझ की बात है। ये निर्णय वर्तमान के आधार पर होना चाहिए, पर्याय का निर्णय वर्तमान के आधार पर होता है और स्वभाव का निर्णय त्रिकाल के आधार पर होता है। भूत के आधार पर तो कोई निर्णय होता ही नहीं, भविष्य के आधार पर कोई निर्णय होता। कल मैंने संकेत दिया था ना, भविष्य में तीर्थंकर होंगे तो हो जाएंगे, कि उनकी पूजा होने चाहिए तो होगी। अब वर्तमान से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब भूतकाल में ऐसे थे नरक निगोद में थे तो होंगे, यदि वर्तमान में भगवान है तो पूजा होगी तो होगी। वर्तमान में जो परिस्थिति पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वर्तमान देखना, द्रव्य की दृष्टि से देखें त्रिकाल देखना। ये भूतकाल और भविष्य काल लाया कहां से? त्रिकाल का तो भूतकाल भविष्य काल नहीं होता भाई साहब, त्रिकाल का तो काल में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं करना उसका नाम त्रिकाल है। तीनों भेद करके खड़े और उन्हें मिला देना उसका नाम त्रिकाल नहीं है। वास्तव में सही शब्द त्रिकाल ही नहीं है, अकाली है, पंडित है। काल का भेद जिसमें नहीं है ऐसा भगवान आत्मा अकाली है ना। पंजाब में अकाली दल, उनके दो बहुत अच्छे दल हैं, बहुत अच्छे नाम हैं वो, ये अपन को क्यों नहीं मिले? एक अकाली दल है और एक निरहंकारी दल है। सिखों में दो है मालूम, एक तो काली नीली नीली पगड़ी वाले निरहंकारी, और ये बाकी के दो पगड़ी वाले ये अकाली। तो दो तरह के हैं सिखों में भेद, जैसे मैंने देखा मछेदाम्बर है ना, ऐसे वहां अकाली और निरहंकारी है। अब अकाली क्यों है? तो अकाली माने वो काल का भेद जिसमें नहीं है, काल से खंडित भगवान नहीं आत्मा नहीं है, काल खंड का जिसमें प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा भगवान आत्मा, द्रव्य से अखंडित, क्षेत्र से अखंडित, भाव से अखंडित और काल से अखंडित, ऐसे भगवान आत्मा को स्वीकार करने वाले वो अकाली दल। और निरहंकारी के पर पदार्थों में अहम रखने वाले अहंकारी, और पर पदार्थ में एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का अहंकार छोड़ने वाले में निरहंकारी। अपन कौन है? क्यों दाढ़ी वाले बाबा? कि अपन अकाली भी हैं और निरहंकारी भी हैं। और सिख तो हैं कांजी स्वामी के। काल खंड से खंडित नहीं हो उसका नाम त्रिकाल है। तो पर्याय का निर्णय वर्तमान से, द्रव्य का निर्णय त्रिकाल से, भूतकाल और भविष्य काल कहते से दृष्टि हटाओ। मैं छावड़ा जी के शब्दों में, भूतकाल सपना है और भविष्य काल कल्पना है, वह एकमात्र वर्तमान अपना है, उसके आधार पर निर्णय करो। वर्तमान में यदि कोई ठीक है तो ठीक है, वर्तमान में गलत है तो गलत है। इतिहास के परत खोदने से कोई लाभ नहीं है, और भविष्य की कल्पना लोक में विचरण करने से भी कोई फायदा नहीं है। आत्मा का कल्याण भी ये होगा, लोक का कल्याण भी होगा, समाज का कल्याण भी इसमें होगा, मुक्तों का कल्याण भी इसमें भी होगा। एक ही रास्ता है और कोई नहीं।